आवाज।
रेडियो तेहरान के सभी श्रोता मित्रों की सेवा में जहरा जैदी और साथियों का सलाम पहुंचे। श्रोताओं, आज अपने कार्यक्रम का आरंभ हम सूरह हूद की 110वीं से लेकर 113वीं आयतों की तिलावत और अनुवाद से कर रहे हैं। कारी हैं हुसैन सबजली।
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم صدق الله العلي العظيم।
अल्लाह के नाम से जो अत्यंत कृपाशील और दयावान है, और निसंदेह हमने मूसा को तौरात प्रदान की, किंतु उसमें मतभेद हो गया। और यदि काफिरों को समय देने के संबंध में आपके पालनहार की परंपरा पहले से निर्धारित न होती तो निश्चित रूप से इसी संसार में उनके बीच फैसला कर दिया जाता, और निसंदेह वे लोग गहरे संदेह में पड़े हुए हैं। और निश्चित रूप से आपका पालनहार उनके कर्मों का बदला उन्हें पूर्ण रूप से प्रदान करेगा और निसंदेह वे जो कुछ करते हैं वो उससे पूर्णतः अवगत है। तो हे पैगंबर, जैसा कि आपको आदेश दिया गया है, आप और आपके साथ ईश्वर की ओर आने वाले लोग प्रतिरोध करें और उद्दंडता न करें कि निसंदेह जो कुछ तुम लोग करते हो ईश्वर उसे देखने वाला है। और अत्याचारियों पर भरोसा न करो कि नरक की आग तुम्हें अपनी चपेट में ले लेगी। और ये जान लो कि ईश्वर के अतिरिक्त तुम्हारा कोई सहायक नहीं है और किसी की ओर से तुम्हारी सहायता नहीं की जाएगी।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है, इस्लामी गणराज्य ईरान की आवाज। दोस्तों, आप हमारे प्रसारण को शॉर्टवेव में 31 मीटर बैंड बराबर 9620 किलोहर्ट्ज पर सुन रहे हैं। आज रविवार है, बहमन की 14 और फरवरी की 3 तारीख है। साथ ही आज इस्लामिक कैलेंडर के 7वें महीने रजब की 12 तारीख है। आज की हमारी सभा के कार्यक्रमों की रूपरेखा कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले आप खबर सुनेंगे, उसके बाद आप कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा को सुनेंगे और उसके बाद आपकी सेवा में अमीरुल मोमिनीन हजरत अली इब्ने अबी तालिब के शुभ जन्म दिवस के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम पेश किया जाएगा। और उसके बाद आज की सभा के अंत में आपकी सेवा में जो कार्यक्रम पेश किया जाएगा वो होगा स्वतंत्रता प्रभात के मौके पर पेश किए जाने वाले विशेष कार्यक्रम की एक अनकड़ी। तो दोस्तों, कार्यक्रम के अनुसार अब आप रेडियो हिंदी तेहरान से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार रविश जैदी से सुनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। ईरानी जनता ने हर क्षेत्र में दुश्मनों को निराश कर दिया, राष्ट्रपति रईसी। 11 फरवरी का दिन मानव इतिहास के महान दिनों और रहस्यों में से एक है, जनरल मूसेवी। रूस ने यूक्रेन को हथियार भेजने के किसी भी कदम के खिलाफ इसराइल को दी चेतावनी। अडानी ग्रुप के मुद्दे पर विपक्ष हुआ सख्त, संसदीय समिति के गठन की मांग। अब आप रेडियो हिंदी तेहरान से विस्तार से समाचार सुनेंगे। इस्लामिक गणतंत्र ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी ने विभिन्न क्षेत्रों में जनता की उपस्थिति को ईरान के दुश्मनों के बीच निराशा और नाउम्मीदी का कारण बताया है। राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी ने स्वतंत्रता प्रभात का आयोजन करने वाली केंद्रीय समिति के सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि ईरान की दूरदर्शी और बुद्धिमान जनता ने 13 आबान बराबर 4 नवंबर सहित विभिन्न अवसरों पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में भाग लेकर जो पिछले वर्षों की तुलना में इस वर्ष बहुत अधिक उत्साह से आयोजित हुआ, ये साबित कर दिया कि वे अपने देश की क्रांति और व्यवस्था की रक्षा के लिए हमेशा तैयार है। राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी ने कहा कि ईरान में हालिया घटनाओं और दुश्मनों के दंगे भड़काने के बारे में इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता का विश्लेषण साजिशों को विफल बनाने में बहुत प्रभावी रहा है। उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि दुश्मनों के तमाम दबावों के बावजूद देश का विकास जारी रहा, जबकि ईरान अवैध और क्रूर प्रतिबंधों को गरिमा और सम्मान के साथ समाप्त करने के लिए बातचीत में शामिल हुआ और दुश्मन की कोई भी चाल सफल नहीं होने दी। देश के राष्ट्रपति ने विदेशी संबंधों और आर्थिक क्षेत्रों में अपनी सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख किया और कहा कि उन्होंने पड़ोसी और क्षेत्रीय देशों के साथ आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को पहले से अधिक बढ़ावा देकर प्रतिबंधों को विफल बनाया है। 22 बहमन अर्थात 11 फरवरी मानव इतिहास के महानतम रहस्यों में से एक है। इस्लामिक गणतंत्र ईरान की सशस्त्र सेना के कमांडर और प्रमुख मेजर जनरल अब्दुल रहीम मूसवी ने कहा है कि 22 बहमन अर्थात 11 फरवरी की तारीख मानव इतिहास के सबसे महान दिनों और रहस्यों में से एक है, और ये केवल ईरान, इस्लाम और प्रतिरोध मोर्चे तक ही सीमित नहीं है। ये तारीख स्वर्गीय इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह के नेतृत्व में ईरान में आई इस्लामी क्रांति के महान सफलता की वर्षगांठ की तारीख है। जिस तरह 44 साल पहले ईरान की महान जनता ने दुश्मनों की ईंट से ईंट बजा दी थी, उसी तरह हाल के दिनों में इस्लामी क्रांति के दुश्मनों की सारी साजिशों पर अपनी एकजुटता और मजबूत इरादों से पानी फेर दिया। ईरान की सशस्त्र सेना के प्रमुख ने पवित्र नगर कुम में इस्लामी क्रांति की सफलता के जश्न में भाग लिया और कहा कि दुश्मनों ने हाल की घटनाओं के लिए विस्तृत योजनाएं बनाई थीं और कुछ देश एक दूसरे के साथ एकजुट भी हुए और इस संबंध में प्रोटोकॉल का भी पालन नहीं किया। अपने सारे साथी बरातियों के मैदान में ले आए दुश्मनों के अनुसार इस बार काम तमाम करना है। साथ ही दुश्मनों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के लिए बहुत ही सटीक योजनाएं बनाई थी। इस दौरान उन्होंने देश के खिलाफ अनगिनत ट्वीट किए जो मूल रूप से किसी व्यक्ति द्वारा निर्मित और प्रकाशित नहीं किए जा सकते। दुश्मनों ने सोचा था कि वे देश को अस्थिर करके अपने सैन्य लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं और इस कारण से उन्होंने अभ्यास किया जो निश्चित रूप से कहीं नहीं पहुंचा। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कनानी ने फ्रांस के उस दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया है कि जिसमें वो तेहरान द्वारा यमन को भेजे गए हथियारों की जाँच किए जाने की बात कर रहा है। समाचार एजेंसी फार्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामी गणराज्य ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कनानी ने फ्रांसीसी सेना की ओर से यमन भेजे गए ईरानी हथियारों के पाए जाने की बेबुनियाद खबरों को खारिज करते हुए कहा कि वे देश जो यमन पर पाशविक हमला करने वाले देशों की खुलकर मदद कर रहे हैं और पश्चिमी एशिया के इस सबसे गरीब देश की जनता के विरुद्ध अमानवीय घेराबंदी का समर्थन करते हैं, वे दूसरों पर आरोप लगाने की स्थिति में नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यमन भेजे गए कथित तौर पर ईरानी हथियारों की फ्रांस की ओर से दी गई रिपोर्ट को खारिज करते हुए कहा कि इस तरह के आरोप केवल अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए लगाए गए हैं ताकि विश्व जनमत को गुमराह किया जा सके। नासिर कनानी ने आगे कहा कि जिन देशों ने यमन की निर्दोष और उत्पीड़ित जनता के खिलाफ थोपे गए युद्ध का पक्ष लिया है, उन्हें इस क्रूर युद्ध में अपने हितों की अनदेखी करके इस बर्बरतापूर्ण और एकतरफा युद्ध को जल्द से जल्द खत्म करना चाहिए। वेस्ट बैंक के अरिया शहर पर जब आतंकी इसराइली सेना हमला कर रही थी, उसी समय शोधाए अल अक्सा बटालियन के जियालों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ज़ायोनी आतंकियों को निशाना बनाया है। प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार की सुबह आतंकी ज़ायोनी सेना ने वेस्ट बैंक के अरिया शहर पर हमला कर दिया। इसराइली सेना ने आम लोगों पर गोलियां चलाईं और आंसू गैस के गोले दागे। इस हमले में कई फिलिस्तीनियों के घायल होने की भी सूचना है। वहीं शोहदाए अल अक्सा बटालियन के जियालों ने अरिया शहर के दक्षिण में स्थित अकबा जबर कैंप के प्रवेश द्वार पर आतंकी इसराइली सैनिकों का रास्ता रोक लिया। स्थानीय लोगों के अनुसार चीनी जियालों ने आतंकी ज़ायोनी सैनिकों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करते हुए उन पर गोलियां बरसाईं। रूस ने यूक्रेन को हथियार भेजने के किसी भी कदम के खिलाफ इसराइल को चेतावनी दी है। इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू पहले ही कह चुके हैं कि वो कीव के सैन्य सहायता भेजने पर विचार कर रहे हैं और युद्ध को समाप्त करने के लिए मध्यस्थता के लिए भी तैयार है। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जाखारोवा ने इस मुद्दे पर संवाददाताओं से कहा कि हमारी स्थिति यह है कि यूक्रेन को हथियार भेजने वाले सभी देशों को पता होना चाहिए कि हमारे सशस्त्र बल इन हथियारों को वैध लक्ष्य मानते हैं। पिछले साल फरवरी में यूक्रेन में युद्ध शुरू होने के बाद से ज़ायोनी शासन ने दावा किया है कि वो युद्ध में तटस्थ है और यूक्रेन को सैन्य सहायता नहीं भेज रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति ने यूक्रेन को टैंक भेजने के पश्चिम के कदम को खतरनाक बताते हुए कहा है कि क्यूब में टैंक भेजना खतरनाक है और इससे यूक्रेन में संकट का समाधान नहीं होगा। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान ने कहा है कि यूक्रेन को टैंकों की आपूर्ति यूक्रेन में संघर्ष को हल करने में मदद नहीं करेगी। अर्दोगान ने टीआरटी टेलीविजन के साथ एक साक्षात्कार में कहा कि मैं ये नहीं कह सकता कि टैंक भेजना संघर्ष समाधान के तत्वों में से एक है, ये एक जोखिम भरा व्यवसाय है और ये हथियारों के दागरों के लिए उपयोगी है और ये संकट को हल नहीं करेगा। इस बीच यूक्रेन के विदेश मंत्री दामित्रो कोल्बा ने घोषणा की है कि देश की सशस्त्र सेना 120 और 140 के बीच पश्चिम के भारी आधुनिक टैंक प्राप्त करेगी। इन हथियारों की डिलीवरी के समय की घोषणा किए बिना उन्होंने कहा कि यूक्रेन फ्रांस के लेक्लर्क युद्धक टैंकों पर बहुत अधिक निर्भर करता है। चीन द्वारा अमेरिका की जासूसी का दावा एक बार फिर सामने आया है। अमेरिकी अधिकारियों ने दावा किया है कि देश के आसमान में चीनी स्पाई बैलून उड़ता नजर आया, जिसके बाद अमेरिकी प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है और उसने चीनी राजनयिक को तलब करके आपत्ति जताई है। पेंटागन ने कहा है कि एक संदिग्ध चीनी जासूसी गुब्बारा कुछ दिनों से अमेरिका के आसमान में उड़ रहा है और सीनियर अमेरिकी अधिकारियों ने राष्ट्रपति जो बाइडेन को इसे शूट न करने की सलाह दी है, क्योंकि ऐसा करने से इसके मलबे से लोगों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। समाचार एजेंसी एएफपी के मुताबिक पेंटागन ने कहा है कि वो संयुक्त राज्य अमेरिका के ऊपर उड़ने वाले एक चीनी जासूसी गुब्बारे पर नजर रखे हुए है, जिसके बारे में आशंका जताई जा रही है कि यह गुब्बारा अत्यधिक संवेदनशील परमाणु हथियार स्थलों की निगरानी कर रहा है। एक वरिष्ठ अमेरिकी रक्षा अधिकारी ने एएफपी को बताया कि शीर्ष सैन्य अधिकारियों ने गुब्बारे को नीचे गिराने पर विचार किया, मगर इस डर से कि ऐसा नहीं किया क्योंकि इससे जमीन पर कई लोगों को खतरा हो सकता है। कांग्रेस और कई अन्य विपक्षी दलों ने अडानी इंटरप्राइजेज मामले पर संसद के दोनों सदनों में चर्चा की मांग की और ये आग्रह भी किया कि इस प्रकरण की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति गठित की जाए या फिर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इसकी जांच हो। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने यह भी कहा कि सार्वजनिक बैंकों और भारतीय जीवन बीमा निगम के अडानी समूह में निवेश तथा निवेशकों के हितों की सुरक्षा को लेकर संसद में विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। अडानी सहित विभिन्न मुद्दों पर हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा की बैठक स्थगित होने के बाद राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे ने संवाददाताओं से कहा कि हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार क्यों दबाव बनाकर ऐसी कंपनियों को कर्ज दिलवा रही है। कई विपक्षी नेताओं की मौजूदगी में खड़गे ने कहा कि जांच होने पर प्रतिदिन रिपोर्ट जनता के समक्ष रखी जाए ताकि पारदर्शिता रहे और लोगों को विश्वास रहे कि उनका पैसा बचा है। गौरतलब है कि अडानी इंटरप्राइजेज ने बुधवार को अपने 20,000 करोड़ रुपए के फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर FPO को वापस लेने और निवेशकों का पैसा लौटाने की घोषणा की। हालांकि कंपनी के FPO को मंगलवार को पूर्ण अभिदान मिल गया था। समझा जाता है कि अडानी इंटरप्राइजेज ने यह कदम अमरीकी निवेश अनुसंधान फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद उठाया। इस कारोबारी समूह ने रिपोर्ट को निराधार बताया था। एक ओर भारत की मोदी सरकार देश के अल्पसंख्यकों मंत्रालय के बजट में भारी कटौती करती चली आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर उसका लगातार ये प्रयास है कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को किसी भी स्थिति में खुश रखा जाए। यही कारण है कि वर्ष 2023 के बजट में तालिबान पर मेहरबान दिखाई दिए हैं भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत की केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट से देश का कई वर्ग नाराज नजर आ रहा है, लेकिन वहीं उनके बजट से तालिबान जैसे गुट खुश भी दिखाई दे रहे हैं। तालिबान सरकार ने भारत सरकार के उस फैसले की सराहना की है जिसमें मोदी सरकार ने इस देश की मदद के रूप में 200 करोड़ रुपए देने का फैसला किया है। भारत सरकार ने 1 फरवरी को साल 2023 का बजट पेश कर दिया। इस बजट में अफगानिस्तान के लिए 200 करोड़ की राशि की घोषणा की है। ये राशि अफगानिस्तान विकास पर खर्च की जाएगी। तालिबान ने भारत सरकार के इस फैसले पर अपनी खुशी व्यक्त की है। इसी के साथ रेडियो हिंदी तेहरान से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार समाप्त होते हैं।
ये प्रसारण आप रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा से सुन रहे हैं।
राजनीतिक चर्चा।
दोस्तों, कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा लेकर मैं सैयद मिसम आपकी सेवा में हाजिर हूं। इराक के मामलों में सऊदी अरब की बढ़ती दिलचस्पी का कारण क्या है, जायजा ले रहे हैं रविश जैदी।
सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान गुरुवार 2 फरवरी को इराक की राजधानी बगदाद पहुंचे। उनकी इस यात्रा को दो देशों के द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय घटनाक्रमों के परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण किया जा सकता है। जहां तक दो देशों के आपसी संबंधों का मामला है, सऊदी अरब और इराक द्विपक्षीय संबंधों में विस्तार का प्रयास कर रहे हैं। इराक वर्तमान आर्थिक समस्याओं को अपने लिए एक बड़ा जोखिम मान रहा है, इसलिए उसे सऊदी अरब से देश में भारी निवेश की आशा है। दूसरी ओर सऊदी अरब अपने पड़ोसी देश की आर्थिक समस्याओं को अपने लिए एक अवसर के तौर पर देख रहा है। वो चाहता है कि इराक में निवेश से वो इस देश में अपना प्रभाव बढ़ाए। गुरुवार को इराकी राष्ट्रपति के साथ सऊदी अरब के विदेश मंत्री की मुलाकात में इस मुद्दे पर भी चर्चा हुई। इराकी संसद सभापति मोहम्मद अल हबूसी ने गुरुवार को फैसल बिन फरहान से मुलाकात की। इस मुलाकात में दोनों देशों के नेताओं ने अर्थव्यवस्था, निवेश और क्षेत्रीय घटनाक्रमों में समन्वय जैसे मुद्दों पर सबसे ज्यादा जोर दिया। सऊदी अरब के विदेश मंत्री का कहना था कि रियाज बगदाद के साथ निवेश समेत समस्त क्षेत्रों में परस्पर सहयोग का स्वागत करता है, ताकि इराक आर्थिक संकट से बाहर निकल सके और उसकी अर्थव्यवस्था में स्थायित्व पैदा हो। क्षेत्रीय स्तर पर अगर देखा जाए तो हालिया वर्षों में सऊदी अरब ने क्षेत्रीय देशों के साथ सहयोग बढ़ाने और तनाव कम करने का प्रयास किया है। सऊदी अरब की विदेश नीति में हम ये एक बड़ा बदलाव देख रहे हैं। इससे पहले तक रियाज के लिए अमरीका और विश्व की बड़ी शक्तियाँ ही महत्व रखती थी, लेकिन कुछ क्षेत्रीय संकटों ने उसे ये सीख दी है कि क्षेत्रीय देशों की अनदेखी या क्षेत्रीय देशों में अस्थिरता के खुद उसके लिए घातक परिणाम हो सकते हैं। सऊदी अरब की विदेश नीति में इस बदलाव का सबसे स्पष्ट उदाहरण ईरान के साथ कूटनीतिक संबंधों की बहाली के लिए तेहरान के साथ वार्ता की मेज पर बैठना है। दोनों देशों के बीच वर्ष 2016 से कूटनीतिक संबंध नहीं है, लेकिन पिछले 2 वर्षों के दौरान इराक की मध्यस्थता से दोनों देशों के बीच 5 चरण की वार्ता हो चुकी है। ऐसा लगता है कि फैसल बिन फरहान की बगदाद यात्रा के महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से एक ईरान के साथ वार्ता को फिर से शुरू करना है। इससे पहले इराक के विदेश मंत्री फवाद हुसैन इस ओर इशारा भी कर चुके हैं। इराक के लिए भी ये मुद्दा महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों पड़ोसी देशों के संबंध का उस पर भी सीधा असर पड़ता है।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा। समाचारों से एक कदम आगे बढ़ते हुए घटनाओं की तह तक पहुंचने और विभिन्न आयामों को छूने की कोशिश। कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा।
ज़ायोनी शासन द्वारा यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति को लेकर रूस ने इसराइल को धमकी दी है। जायजा ले रहे हैं अख्तर अब्बास।
बुधवार को इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू के इस ऐलान के बाद कि तेल अवीव यूक्रेन की सैन्य सहायता पर विचार करेगा, रूस ने इसराइल को धमकी दी है। रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़ाखारोवा ने कहा है कि हम दूसरे पक्ष को भौगोलिक आधार पर नहीं बांटते हैं, बल्कि हमारा मानना है कि जो भी कीव को हथियार दे रहा है उससे पता होना चाहिए कि हम उन हथियारों को निशाना बनाने का कानूनी अधिकार रखते हैं। कुछ रिपोर्टों में उल्लेख किया गया है कि नेतन्याहू सरकार यूक्रेन युद्ध को लेकर तेल अवीव की नीति पर पुनर्विचार करेगी। दरअसल इसराइल यूक्रेन को रक्षा उपकरण देने पर भी विचार कर रहा है। ज़ायोनी विदेश मंत्री ने 19 जनवरी को कीव को विश्वास दिलाया था कि इसराइल यूक्रेन के लिए अपनी मानवीय सहायता जारी रखेगा। राजनीतिक गलियारों में ऐसे कयास भी लगाए जा रहे हैं कि वॉशिंगटन ने तेल अवीव से कहा है कि हॉक वायु रक्षा प्रणाली समेत वो यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति करे। 1960 के दशक में तेल अवीव ने इस उपकरण को वॉशिंगटन से खरीदा था। ज़ायोनी शासन ने करीब एक दशक पहले ही हॉक वायु रक्षा प्रणाली को सेवा से खारिज कर दिया था। उसके पास अभी भी सैकड़ों मिसाइलों के साथ 10 हॉक बैटरियां हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने पिछले महीने खुलासा किया था कि इसराइल के अवैध कब्जे वाले फिलिस्तीनी इलाकों में स्थित अमेरिकी सेना के एक विशाल गोदाम से गुप्त रूप से यूक्रेन को हजारों आर्टिलरी गोले भेजे गए हैं। नेतन्याहू ने इस बारे में सीएनएन को बताया कि ये निर्णय अमेरिका पर निर्भर है और उन्हें इस बारे में कोई समस्या नहीं है। यूक्रेन युद्ध में इसराइल की भूमिका में वृद्धि को लेकर मॉस्को ने तेल अवीव को चेतावनी दी है। इससे पहले रूस बहुत ही स्पष्ट रूप से इसराइल को चेतावनी दे चुका था कि यूक्रेन को वायु रक्षा प्रणाली स्थानांतरित करने के प्रयासों का गंभीर परिणाम निकलेगा और ये मॉस्को की रेड लाइन को पार करने जैसा होगा। मॉस्को ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर इसराइली हथियार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से यूक्रेन भेजे गए तो रूस इस पर एक्शन जरूर लेगा। दरअसल इसराइल ने यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति के लिए व्यवहारिक कदम उठा लिया है। ज़ायोनी शासन की हथियारों का निर्माण करने वाली एक कंपनी ने पोलैंड के माध्यम से एंटी ड्रोन प्रणाली यूक्रेन को दी है। इसराइल में नेतन्याहू के नेतृत्व में नई सरकार के गठन के बाद से यूक्रेन युद्ध को लेकर ज़ायोनी शासन की नीति में बदलाव देखने में आ रहा है। अमेरिका ने भी इसराइल पर यूक्रेन को हथियार देने के लिए दबाव बढ़ा दिया है, लेकिन इस स्थिति में मॉस्को भी चुप रहने वाला नहीं है और वो इसराइल को लेकर अपने संबंधों पर पुनर्विचार कर सकता है और उससे उचित जवाब दे सकता है।
और अब रुख करते हैं भारत का। भारत प्रशासित जम्मू कश्मीर में सरकार द्वारा लीज पर दी गई जमीनों को छीनने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। ब्यौरा दे रहे हैं श्रीनगर से सिप्ते हसन।
जम्मू कश्मीर यूटी प्रशासन ने जम्मू कश्मीर में जो सरकारी जमीन को खाली कराने का अभियान आरंभ कर रखा है उसने एक नए विवाद को जन्म दिया है। जहां यूटी प्रशासन का कहना है कि सरकारी जमीन को गलत इस्तेमाल में लाया गया है और उन लोगों को पकड़ा जाएगा जो प्रशासन में बड़े बड़े ओहदों पे थे, परंतु आम लोगों पर इसकी तलवार लटकती नजर आ रही है जिससे लोगों में भी गम गुस्से के साथ साथ खौफ भी महसूस हो रहा है। श्रीनगर के विभिन्न क्षेत्रों में इस अभियान के तहत विभिन्न लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाए गए और इसी हवाले से श्रीनगर के केंद्र में स्थित निरोज होटल पर भी बिल्डोजर चलाया गया। इस अवसर पर गुपकार एयरलाइंस के प्रवक्ता मुजफ्फर शाह ने पत्रकारों के साथ वार्ता करते हुए कहा कि ये प्रॉपर्टी 150 साल से लीज में है, परंतु ये जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है हम इसका भरपूर मुकाबला करेंगे। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और यूटी प्रशासन के गवर्नर से आह्वान किया कि वो ऐसा करने से गुरेज करें। उन्होंने इस अवसर पर कहा,
150 साल पुरानी है ये प्रॉपर्टी सारी, اور آپ ہم کو کہہ رہے ہیں یہاں سے آپ نکل جائیں ہم بلڈوزر چلائیں گے؟ تب آپ اپنے گھروں پہ پہلے بلڈوزر چلاؤ، جا کے راج بھون پہ چلاؤ بلڈوزر، جا پرائم منسٹر ہاؤس پہ چلاؤ، یہ 150 سال پرانی پراپرٹی ہے، شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو اس طرح کرنے سے۔
اس بیچ ایک بار پھر جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ عام لوگوں کو اس سے پربھاوت ہونے نہیں دیا جائے گا، اور اگر ان کے اپیوگ میں زمینیں ہیں بھی تو انہیں مالکانہ حقوق دیے جائیں گے، پرنتو ان کے ساتھ کوئی چھیڑ خانی نہیں ہوگی۔ انہوں نے اپنے ایک وکتوی میں کہا کہ جو بڑے بڑے لوگ یہاں پر راجنیتی کرتے آئے ہیں انہوں نے سرکاری زمینوں کا غلط استعمال کیا ہے، اور جو ان کے قبضے میں ہے اسے جموں کشمیر یوٹی پرشاسن کسی بھی حال میں خالی کرائے گی۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ جو افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں اس پر وہ کان نہ دھریں، پرنتو سول سوسائٹی اور انیہ لوگوں نے اس پر کھید پرکٹ کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو استھتی سامنے آ رہی ہے اس کے گمبھیر پرینام نکلیں گے۔ سری نگر میں ایک مارکیٹ کو بھی سیل کر دیا گیا تھا، پرنتو لوگوں کی طرف سے ورودھ کرنے کے بعد اس مارکیٹ کو اب واپس کھول دیا گیا ہے۔ سپتی محمد حسن، ریڈیو تہران، سری نگر۔
اسی کے ساتھ راجنیتک چرچا سماپت ہوئی۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے، اسلامی گڑراج ایران کی آواز۔ دوستوں، آپ ابھی کارکرم راجنیتک چرچا ہمارے ساتھی سید میسم سے سن رہے تھے۔ اب آپ کی سیوا میں امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب کے شبھ جنم دیوس کے اوسر پر ایک وشیش کارکرم پیش کیا جا رہا ہے۔
دوستو، حضرت علی علیہ السلام کے شبھ جنم دیوس پر ایک وشیش کارکرم لے کر اپستھت ہیں۔ سید میسم اور مریم مہردادی کا سلام سویکار کیجیے۔
جس دن اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا اور فرشتوں کو عبادت کے لیے رکھ دیا، تو ساتویں آسمان پر ایک ستھان ایسا نردھارت کیا جو فرشتوں کی عبادت اور سجدوں سے آباد ہوا۔ اللہ نے ساتویں آسمان کے اس بھاگ کا نام بیت معمور رکھا، یعنی وہ گھر جو ہمیشہ آباد رہے۔ جب حضرت آدم پیدا کیے گئے تو فرشتوں سے بھی آگے وہ عبادت کے لیے کھڑے ہو گئے، اور سارے فرشتوں کو اللہ کا حکم ملا کہ ان کا انوسرن کریں۔ فرشتوں نے انوسرن کیا مگر شیطان نے نہیں کیا، جو خود کو حضرت آدم سے شریشٹھ سمجھتا تھا۔ اس نے گھمنڈ میں آ کر اللہ کے آدیش کی اندیکھی کر دی۔ اس نے قسم کھائی کہ حضرت آدم اور ان کی سنتان کو سیدھے راستے میں بہکائے گا، اور انہیں اللہ کی عبادت اور مناجات سے دور رکھے گا۔ شیطان کی سازش کامیاب ہوئی، اور اس کے بہکاوے کے نتیجے میں حضرت آدم اور حضرت حوا کو جنت سے باہر نکلنا پڑا، اور دھرتی پر زندگی گزارنے کے لیے اترنا پڑا۔
حضرت آدم نے بیت المعمور کی یاد میں زمین پر ایک گھر بنایا جو بندوں کی عبادت سے ہمیشہ آباد رہے۔ زمانہ اسی طرح گزرتا رہا، یہاں تک کہ حضرت آدم کی سنتان کے بیچ مت بھید پیدا ہو گئے۔ وہ آپس میں ہی ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے۔ شیطان نے اس بار بھی انسانوں کو اللہ کے گھر سے نکال دینے کی کوشش کی، جس طرح اس نے حضرت آدم اور حوا کو آسمان پر بنے بیت المعمور سے نکالا تھا۔ اللہ کا گھر آباد ہو جانے سے شیطان بوکھلایا ہوا تھا، اس لیے کوشش میں تھا کہ کسی طرح اسے تباہ اور ویران کرے۔ پھر اس نے اسی گھر میں بتوں اور مورتیوں کو رکھوانے کی کوشش کی۔
اللہ کے مہان پیغمبر حضرت نوح نے 900 سال شیطان سے سنگھرش کیا اور انسانوں کو اللہ کی عبادت کی دعوت دی، مگر انسانوں کا بہت چھوٹا سا سموہ ان کے ساتھ آیا۔ جب حضرت نوح نے گنہگار بندوں کی ضد اور اڑیل رویے کی اللہ سے شکایت کی، تو آسمان سے اتنی بارش ہوئی کہ پوری دھرتی پانی میں ڈوب گئی، اور سارے گنہگار بھی پانی میں ڈوب کر ختم ہو گئے۔
جب عذاب سماپت ہوا تو دھرتی دوبارہ پانی سے باہر نکلی اور بھلے انسانوں کو اس پر قدم رکھنے اور بسنے کی جگہ ملی۔
شیطان اب بھی باز نہیں آیا، اس نے اللہ سے قیامت تک کی مہلت مانگی کہ اس پوری مدت میں حضرت آدم کی سنتان یعنی انسانوں کو بہکاتا رہے۔ اس بار اللہ نے حضرت ابراہیم کو انسانوں کی ہدایت کی ذمہ داری دی۔ انہوں نے اللہ کے گھر کعبے کا نرمان کیا جو شانتی اور اللہ کی عبادت کی جگہ ہو۔ اس دن سے آج تک کعبہ بہت سارے اتار چڑھاؤ سے گزرا ہے۔ کبھی اس کا طواف ایسا مہان انسان کر رہا تھا جس کے ساتھ پوری کائنات کعبے کا طواف کر رہی تھی، اور کبھی انسانوں کی بھاری بھیڑ طواف کر رہی تھی، مگر وہ ایسے انسان تھے جن میں انسانیت نہیں تھی، کیول ان کا ظاہری روپ انسانوں جیسا تھا۔ اس سارے اتار چڑھاؤ میں حضرت ابراہیم کی نسل کے ایسے انسان آتے رہے جنہوں نے کعبے کی پہرے داری اور حفاظت کی اور شیطان کی سازشوں کو ناکام بنایا۔
ایک دور تھا جب کعبہ انسانوں کی مورتی پوجا سے ویتھت تھا اور اللہ سے اس بیماری کے خاتمے کی کامنا کرتا تھا۔ اللہ نے کعبے کی دعا سنی اور حضرت ابراہیم کی نسل سے ایک مہان ہستی پیدا کی جس کا نام محمد تھا۔ اب کعبہ حضرت محمد اور ان کی مہانتاؤں کی جھلک دیکھتا تھا، اور وہ وہی دور تھا جب اس ایک مہان ہستی کے ساتھ پوری کائنات کعبے کا طواف کیا کرتی تھی۔ ان کے آغمن کے بعد کعبے کا سارا درد مٹ گیا، مگر اب کعبے کی پیڑا تھی حضرت محمد علیہ السلام کی تنہائی۔
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 30 سال کے ہوئے تو وہ گھڑی آئی جب حضرت محمد کی تنہائی دور ہو گئی۔ اب کعبے کو ایک شیشو کے جنم کا انتظار تھا جو آ کر حضرت محمد کے مددگار اور ساتھی بنے۔ آخرکار وہ گھڑی آ گئی۔ 13 رجب کی تاریخ تھی۔ بنی ہاشم قبیلے کی مہان مہیلا پرسو پیڑا کی استھتی میں کعبے کی شرن میں آئی اور اللہ سے دعا کی کہ پروردگار، میں تجھ پر ایمان لائی اور تیرے پیغمبر پر ایمان لائی، اور تو نے جو گرنتھ نازل کیے ان پر ایمان لائی۔ میں اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اپدیشوں کی تصدیق کرتی ہوں جنہوں نے کعبہ بنایا۔ تو اس گھر کے طفیل میں، اس گھر کو بنانے والے طفیل میں، اور اس شیشو کے طفیل میں جو میرے پیٹ میں ہے اور مجھ سے بات کر رہا ہے، میری تنہائیوں کا ساتھی بنا ہوا ہے، تجھ سے پرارتھنا کرتی ہوں کہ اس کے جنم کا مرحلہ میرے لیے آسان کر دے۔
جب فاطمہ بنت اسد نے اپنی زبان سے یہ جملے کہے تو ایسا لگا مانو آسمان کے دروازے کھل گئے ہوں۔ کعبے کو بیت المعمور کے بھیتر موجود فرشتے دکھائی دینے لگے جو سب کعبے کی طرف اتر رہے تھے۔ فرشتے کے آگے آگے حضرت مریم اور حضرت آسیہ آ رہی تھی۔ کعبے نے شوق میں ڈوب کر اپنی آگوش میں حضرت فاطمہ بنت اسد کو لے لیا۔ حضرت فاطمہ بنت اسد کعبے کے بھیتر گئی اور کعبے کی دیوار میں ان کے پرویش کے لیے بنا دوار بند ہو گیا۔ اس کے بعد کسی کو بھیتر جانے کی انومتی نہیں ملی۔ کعبہ، جس نے اپنی دیوار میں دروازہ بنا کر حضرت فاطمہ بنت اسد اور ان کے شیشو کا سواگت کیا تھا، اب کسی اور کے لیے اپنے دروازے بھی کھولنے کے لیے تیار نہیں تھا۔
لا بتائی
تین دن تک پورے مکے میں حضرت فاطمہ بنت اسد کے ساتھ ہونے والی اس گھٹنا کی چرچا ہوتی رہی۔ سب کی نگاہیں کعبے کے دروازے پر لگی ہوئی تھی کہ یہ پتہ چلے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد کا انجام کیا ہوا۔ سب نے دیکھا کہ اس بار بھی کعبے کا دروازہ کھلنے کے بجائے دیوار بیچ سے کھلی اور حضرت فاطمہ بنت اسد اپنے شیشو کو گود میں لیے ہوئے کعبے سے باہر نکلی۔ ان کی گود میں شیشو یعنی حضرت علی کا جھولا تھا۔ وہ کہتی جا رہی تھی کہ ہے لوگو، سن لو، اللہ نے مجھے چنا ہے اور مجھے عتیت کی چنندہ مہیلاؤں کی شریشتا پردان کی ہے، کیونکہ چنندہ گھر میں میرے پیٹ سے چنندہ بچے نے جنم لیا ہے۔ میں تین دن اس سمانت گھر کے بھیتر رہی اور سورگ کے کھانے اور پھلوں کا میں نے سیون کیا۔ جب میں باہر آنا چاہتی تھی تو ایک آواز آئی کہ ہے فاطمہ، اپنے اس مہان بچے کا نام علی رکھو۔ میں مہان اللہ ہوں، میں نے اس بچے کی رچنا کی ہے اور اسے اپنی شکتی، ویبھو اور نیائے دیا ہے۔ وہ میرے پرتشت گھر میں پیدا ہوا ہے۔ وہ پہلا انسان ہوگا جو کعبے کی چھت پر اذان دے گا اور مورتیوں کو توڑے گا اور انہیں کعبے کے اوپر سے نیچے پھینک دے گا اور میری مہانتا اور عظمت کا ذکر کرے گا۔
کعبے نے اللہ کے سارے وعدے سنے اور اسے گیات ہو گیا کہ اس کے ہر درد کی دوا حضرت محمد اور حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھ میں ہیں۔ وہ دونوں ہستیاں جو ایک دوسرے سے جڑی رہیں گی، کبھی الگ نہیں ہوں گی۔ ان وعدوں کے پورا ہونے کو لے کر کعبے کا اتساہ عظیم تھا، کیونکہ کعبے کو پتا تھا کہ اب شیطان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے جائیں گے۔
حضرت علی علیہ السلام اکیلی ہستی ہیں جن کا جنم کعبے کے بھیتر ہوا۔ ان سے پہلے نہ کسی کا کعبے کے بھیتر جنم ہوا اور نہ ان کے بعد کعبے کے بھیتر کسی کا جنم ہوگا۔ وہ مہان پیغمبروں آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور محمد علیہ السلام کے وارث ہیں۔ کعبہ اس مدھور دن کو کبھی نہیں بھولے گا جب حضرت علی علیہ السلام کا جنم ہوا تھا۔ یہ وہ دن تھا جب حضرت محمد کو ان کا ساتھی اور وارث ملا۔ ہر سال 13 رجب کو کعبہ حضرت فاطمہ بنت اسد اور حضرت علی کو خاص انداز میں یاد کرتا ہے اور دیوار کی درار اس یاد کو تازہ کرتی ہے جہاں دروازہ بن گیا تھا۔
دعا ہے کہ ہمارے دلوں میں بھی وہی کعبے والا شوق پیدا ہو اور وہی بے قراری و بیتابی ہمارے بھیتر مچلے، اور کعبے کی دیوار کے ساتھ ہی ہمارے دل بھی اس مہان ہستی کی یاد میں ڈوب جاتے۔ ہمارے دل کی نگاہوں میں اتنی روشنی تو نہیں ہے کہ ہر سال حضرت علی کا شوق لے کر آسمان سے زمین پر اترنے والے فرشتوں کو دیکھ سکیں، لیکن ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے دل حضرت علی کی محبت سے محروم نہیں ہیں۔ ہم بھی کعبے کے ساتھ اس دن کو یاد کرتے ہیں، اس دن کو شردھا پیش کرتے ہیں، اور پیغمبروں کے وارث، رسول خدا کے وارث حضرت علی کے جنم کی مبارک بات پیش کرتے ہیں۔
یہ ریڈیو ہندی تہران ہے، اسلامی گراج ایران کی آواز۔ دوستو، ابھی آپ کاریکرم امام علی علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر شبھ جنم دیوس کے اوسر پر سن رہے تھے. اب آپ کی سیوا میں جو کارکرم پیش کیا جا رہا ہے وہ ہے سوتنترتا پربھات کے موقع پر پیش کیے جانے والے وشیش کارکرم کی ایک انکڑی.
سوتنترتا پربھات.
دوستوں, سوتنترتا پربھات پر وشیش کارکرم کے ساتھ آپ کی سیوا میں حاضر ہیں. آج کے کارکرم میں ہم پوتر قرآن, امام خمینی کے نیتتو اور سماج کے وبھن ورگوں کے بیچ ایکتا کے وشے پر چرچا کریں گے. قائم رضوی اور مریم مہردادی کا سلام سویکار کیجیے.
گیارہ فروری 1979 میں ایک آشچرچکت کر دینے والی مہتوپورن خبر نے پوری دنیا کو اپنی اور آکرشت کر لیا, اور یہ خبر تھی کہ ایران میں اسلامی کرانتی سفل ہو گئی اور پہلوی پریوار کی عمر ختم ہو گئی. لیکن اس مہان اور جن کرانتی کے پرینام تک پہنچنے میں وبھن کارکوں کی ضرورت تھی, جن کا آپس میں سمنوت ہونا بہت ضروری تھا, اور انہی کارکوں نے شاہ کی اتیاچاری سرکار کا تختہ الٹ کر رکھ دیا.
ایران میں حکومت کر رہی شاہ کی اتیاچاری سرکار کو دنیا کی بڑی شکتیوں, وشیش کر امریکہ کا بھرپور سمرتھن پراپت تھا. اسے ایران کی جنتا نے اپنی اچھا شکتی سے اکھاڑ پھینکا. اس بارے میں ایرانی جنتا کی ایکتا اور ایک جٹتا اور امام خمینی جیسے ہوشیار, ساہسی تتھا دوردرشی نیتا کی اندیکھی نہیں کی جا سکتی, جو اسلامی کرانتی کی سفلتا میں مہتوپورن کارک رہے ہیں.
سماج کے سبھی لوگوں کے بیچ واستوک ایکتا ہمیشہ سے ہی شکتی, سفلتا اور جیت کا کارن بنتی ہے, اور اس کا پرینام لوگوں کے بیچ سر ہردیتا اور کرانتی کے وبھن چرنوں کی سفلتا کی وجہ سے بھی بنتی ہے. نسندیہ سورگیہ امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے جنتا کے بیچ ایکتا کی زنجیر بنانے اور اس کو مضبوط کرنے میں اہم بھومکا ادا کی ہے, اور وہ اپنے بھاشنوں اور سندیشوں میں ہمیشہ سے ہی جنتا کے بیچ متبھید کے بیج بوئے جانے کے پرتی سچیت کرتے رہتے ہیں. اتیاچاری پہلوی شاسن کے ورودھ سنگھرش میں ایرانی جنتا نے ہمیشہ سے ہی اپنی ایکتا اور ایک جٹتا کا پردرشن کیا, اور جب بھی ضرورت ہوئی ایک ساتھ میدان میں حاضر رہی, جس کی وجہ سے شاہ کا پرانا اتیاچاری شاسن گر گیا.
اسلامی کرانتی کے دوران ایرانی راشٹر کے بیچ ایکتا کی مضبوطی کے دو کارن تھے. ایک, سبھی لوگ شاہ کی اتیاچاری سرکار سے اوب چکے تھے, اور دوسرا کارن کرانتی پر چھائی وچار دھارا کے روپ میں اسلام کے پرتی گہرا لگاؤ تھا. واستو میں ایران کی جنتا کی کرانتی کا اسلامی ہونا اس کی ایک اہم وشیشتا ہے. جنتا کے نعرے اور سورگی امام خمینی کے درشٹیکون دونوں ہی اس بات کا کارن بنے کہ ایرانی راشٹر کا ایتہاسک آندولن دھرم اور جنتا کی پوتر آستھا اور نیم ارتھات اسلامی دھرم سے پریرت ہے. اسی لیے کرانتی کی سفلتا کے 1.5 مہینے کے بعد ہی ایران کی 98% جنتا نے ایک ادویتی ریفرینڈم میں اسلامی ویوستھا کے پکش میں متدان کیا, تاکہ دیش میں اسلامی مولیوں اور نیموں کا راج استھاپت کیا جا سکے.
ایک اسلامی ویوستھا کے پکش میں اتنا بڑا اور ویاپک متدان اس بات کا چنہ ہے کہ ایران کی اسلامی کرانتی دنیا کی انیہ کرانتیوں کے وپریت آدھیاتمک اور اسلامی پرورتی سے سمپن ہے, اور اسلامی لکشیوں اور آدرشوں کے ساتھ ساتھ اسلامی شکشاؤں اور نیموں پر آدھارت ہے. سورگی امام خمینی نے ایرانی راشٹر کی ایکتا میں اسلام دھرم کی بھومکا کے بارے میں کہا تھا کہ جب تک ایشور کا ارادہ نہ ہو انسان کے لیے سمبھو ہی نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے ایک پلیٹ فارم پر پہنچ جائے.
یدپی ایرانی جنتا کی دھارمک آستھائیں بہت گہری ہیں, لیکن جو چیز اس بات کا کارن بنی وہ شاہی شاسن کے ورودھ سنگھرش اور لکش کے روپ میں ان آستھاؤں کو سویکار کیا وہ ان کے لوک پری اور پسندیدہ نیتا سورگی امام خمینی और उनका मार्गदर्शन था। वो जनता के अध्यात्म और धर्म की ओर रुझान से पूरी तरह से अवगत थे और इसी को उन्होंने इस्लाम की अत्याचार विरोधी और स्वतंत्रता प्रेमी शिक्षाओं के केंद्र में बदल दिया।
जी हाँ दोस्तों, स्वर्गीय इमाम खोमेनी ने इस जागरूकता का एक हिस्सा 1963 में अपने कुछ शिष्यों, संघर्षकर्ता और क्रांतिकारी विचारों के साथ शुरू किया था और उन्होंने इस्लाम को अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष करने वाला और न्याय और वंचितों का समर्थक धर्म करार दिया था। वास्तव में इमाम खोमेनी रहमतुल्लाह अलैह ने जनता को इस्लाम की सामाजिक और राजनीतिक शिक्षाओं से अवगत कराया और उन पर अमल को अल्लाह की खुशी व कल्याण की प्राप्ति और क्रांति की सफलता के लिए ईश्वर की मदद करार दिया था, जैसा कि आप सूरह मोहम्मद की आयत संख्या 7 में पढ़ते हैं कि हे वो लोग जो ईमान लाए, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह भी तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हें अपने दृष्टिकोण पर डटा हुआ बना देगा।
ईरानी जनता ने शाह के विरुद्ध अपने संघर्ष में, यहाँ तक कि इस्लामी क्रांति की सफलता के बाद भी, अल्लाह की मदद और उस पर भरोसे तथा उसके मार्ग में उठाए जाने वाले कदमों के नतीजे देखे हैं। ईरानी जनता का सामाजिक और व्यापक प्रदर्शन पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के नवासे की शहादत के दिन अंजाम दिया गया, क्योंकि ईरान की जनता जानती है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की क्रांति अत्याचार के विरुद्ध थी।
मुहर्रम की 9वीं और 10वीं तारीख तथा अरबईन का दिन ईश्वरीय आंदोलन की याद दिलाता है। इन दिनों ईरान की जनता ने अपनी एकता का प्रदर्शन करते हुए भव्य रैलियां निकाली और एकता का प्रदर्शन करते हुए अत्याचार और साम्राज्यवादी शक्तियों के विरुद्ध गगनभेदी नारे लगाए। ईरानी जनता की इतनी व्यापक उपस्थिति ने सभी को हैरान कर दिया था।
दोस्तों, जब हम ईरानी जनता द्वारा इस्लामी शिक्षाओं के अनुसरण की बात करते हैं तो वास्तव में जिन नियमों और मूल्यों से हम संपन्न हैं उनका पवित्र कुरान में उल्लेख किया गया है। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का ये अद्वितीय चमत्कार विभिन्न स्तरों पर इंसानों के सामाजिक व व्यक्तिगत कामों पर लागू करने का बेहतरीन नियम है। इस्लामी क्रांति के कठिन चरणों में भी पवित्र कुरान की शिक्षाएं हमेशा से मार्गदर्शक और महत्वपूर्ण रही हैं।
दोस्तों, बात यहीं पर खत्म नहीं होती। दूसरी ओर पहलवी शासन जनता के दमन के लिए विदित रूप से आधुनिक शक्ति से संपन्न था और उसको विदेशियों का भरपूर समर्थन भी प्राप्त था। ईश्वर पर भरोसा और उसकी इच्छाओं के आगे नतमस्तक होना जनता की शक्ति और उनके मजबूत होने की शुभ सूचना बन गया। ईरान की मुस्लिम जनता ने सूरह अहज़ाब की आयत संख्या 3 को अच्छी तरह पढ़कर उसके अपने मन में बसा लिया कि अल्लाह पर भरोसा करो कि इंसानों का रक्षा और उनकी मदद करने वाला वही एक है।
इन विशेषताओं के साथ ईरान की जनता ने अपने कठिन संघर्ष की शुरुआत की। उसने उस बड़ी शक्ति पर भरोसा किया जो हर अत्याचारी को खत्म और उसे तबाह व बर्बाद करने वाला है। ईरान की जनता ने ईश्वर पर भरोसा करते हुए उसकी मदद की छत्रछाया में अपना संघर्ष शुरू किया। उसके बताए हुए रास्ते पर वो आगे बढ़ती रही। जैसा कि सूरह फुस्सिलत की आयत संख्या 30 में आया है कि जिन लोगों ने कहा है कि ईश्वर हमारा रब है, उसके बाद इस आस्था पर वे डटे रहे तो उनके ऊपर फरिश्ते नाजिल होते हैं और उनसे कहते हैं कि न डरो और न भयभीत हो, तुम्हें उस स्वर्ग की शुभ सूचना दी जाती है जिसका वादा तुमसे किया गया था।
पवित्र कुरान के एक व्याख्याकार, महान लीडर और बड़े धर्मशास्त्री के रूप में इमाम खोमेनी ने जनता को पवित्र कुरान का अनुसरण करने और उसकी शिक्षाओं पर अमल करने पर प्रेरित किया। वास्तव में पवित्र कुरान ने इस्लामी क्रांति के दृष्टिगत लक्ष्यों पर आधारित समाज को बनाने में अहम भूमिका अदा की, जो अल्लाह की ओर से नाजिल हुई और उसमें कोई कमी या नुकसान नहीं है।
दोस्तों, यही कारण है कि स्वर्गीय इमाम खुमैनी ने इस जन क्रांति और उसके मूल्यों को पवित्र कुरान से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा था कि हम क्रांति इसलिए लेकर आए हैं ताकि इस्लाम, इस्लामी कानून और पवित्र कुरान की हमारे देश पर हुकूमत हो और कोई भी कानून इस्लाम के मुकाबले में न हो और न ही भविष्य में होगा। वास्तव में स्वर्गीय इमाम खुमैनी ने इस्लामी क्रांति और इस्लामी व्यवस्था को स्वतंत्रता, स्वाधीनता और लोकतंत्र जैसे लक्ष्यों पर प्रतिबद्ध बताया, लेकिन पवित्र कुरान और इस्लाम की मुख्य शिक्षाओं से जो पाठ लिया जाता है वो ही असली पाठ और नियम है, न कि पश्चिम का आदर्श नियम और कानून है।
इस विशेषता के साथ इस्लामी गणतंत्र पवित्र कुरान, इस्लामी शिक्षाओं व अध्यात्म के आधार पर एक नई शैली के रूप में उभर कर सामने आया। यही कारण है कि पश्चिम की लिबरल सरकारों ने इस क्रांति का कड़ा विरोध किया और विभिन्न बहानों से इस पर कड़े से कड़े दबाव डाले, लेकिन इस्लामी क्रांति की उमंगें इस्लामी शिक्षाओं और पवित्र कुरान के मूल्यों से निकली हैं। ये क्रांति अत्याचारग्रस्त लोगों के लिए एक प्रकाश में बदल गई। ईरान की इस्लामी क्रांति का प्रकाश धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल रहा है और लोग इसकी ओर से बड़ी ही आशा भरी नज़रों से देख रहे हैं। तो दोस्तों, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है, हमें अनुमति दें।
यह रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओं, आप हमारे प्रसारण को शॉर्टवेव में 31 मीटर बैंड बराबर 9620 किलोहर्ट्ज़ पर सुन रहे हैं। हम आशा करते हैं कि हमारा प्रयास आपको पसंद आया होगा। कार्यक्रमों के बारे में अपने विचारों और प्रतिक्रियाओं से हमें अवश्य अवगत करवाते रहिए। तो अगली सभा तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।
بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آپ